रे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादे पाश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्ये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा एकादशी हरिवासरे माधव तिथि बहुत भक्ति का सहायक दिन है और प्रवीण जी और सिंधु संतोष देवी के निवास स्थान पे दोपहर के सत्संग में आप सबका स्वागत है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने एक भजन गाया है जिसमें भक्ति में हमारे को क्या क्या सहायता और सहयोग कहाँ से मिल सकता है, सहयोग कहाँ से मिलता है, भक्ति कैसे बढ़ती है अथवा भक्ति के बीज में क्या क्या आता है, कौन से नियम हैं जो भक्ति में हमको प्रगति में आगे बढ़ने में सहयोगी होते हैं। ये भजन का रूप है, भजन न गाते हुए इनको पढ़ते जाते हैं और इसका अर्थ समझते जाते हैं। तो सभी बोलिए शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भकत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल ये पहला भजन का स्टेंजा है जिसमें भक्ति के लिए सबसे मुख्य अंग है शुद्ध भक्त चरण रेणु। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भजन का अर्थ होता है भगवान की सेवा, और जो भगवान की सेवा होती है वो होती है प्रेम से, और जो प्रेम से भगवान की सेवा होती है उसको कहते हैं भक्ति। तो भजन के लिए अनुकूल के अनुकूल का मतलब फेवरेबल। फेवरेबल क्या है भजन के लिए, अनुकूल क्या है? बोला भक्त चरण रेणु, भक्त के चरणों की धूल, रेणु का मतलब धूल, रेती का कण जो भगत के चरण में लगा है, ये भक्ति के, ये भगवान की भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कोई भक्त बैठा है उसको कहे तुम जूता उतारो, तुम्हारे पांव को हम खुर्स के धूल उतार के जाएंगे, इसका अर्थ ये निकलेगा? हाँ, खड़े खड़े बाजार में सब भक्तों को, हमको परेशानी कब होती है जब हम कथा करके उतरते हैं ना, ये पता नहीं उन्होंने गलत पढ़ा है इसको, वो पकड़ के ऐसे ऐसे उतारते हैं कुछ पांव से, अरे भाई क्या कर रहे हैं पता नहीं, और मैं आगे जाता हूं मुझे देखता नहीं पीछे कोई पांव को हाथ लगाता है। तो आशीर्वाद तो दूर की बात, उसकी भक्ति बढ़े दूर की बात, मुझे डर लगता है कहीं मैं इसके ऊपर गिरा तो इसका क्या होगा। वो तो ऐसे पांव को पकड़ता है पीछे परेशान करता है। तो ये भक्त चरण रेणु का अर्थ नहीं है कि किसी को पांव पकड़ लेना है। एक महात्मा को मैंने पूछा कि ये भक्त सारे आपके पांव दबा रहे हैं, बोला मत पूछो महाराज, ये नाखून इतने इतने बड़े हैं, मुझे पीड़ा हो रही है, लेकिन अब क्या करूं इनको, ये जरूर ऐसे आके चपक पड़ते। ये सेवा, अब आपको फ्लाइट के ऊपर जाना है, आपको ट्रेन पकड़नी है, आप भागते रहे और हर को आके बीच में स्पीड ब्रेकर होके प्रणाम करे, ये कोई मतलब है? ये कोई चरण रेणु हो गया? चरण रेणु का अर्थ है भक्त के पीछे चलना। अब जैसे आगे चलते हैं ना, तो उसके पांव से धूली उड़ेगी तो आपको लगेगी ना अपने आप, इसका मतलब ये टू फॉलो द डिवोटी, उसकी शिक्षा को फॉलो करना। पांव पकड़ने से काम नहीं होगा, शिक्षा को फॉलो करने से काम होगा, जो उसकी शिक्षा, इट मीन्स टू फॉलो द डिवोटी। चरण रेणु का मतलब उसके पीछे चलना, अनुगत होना। तो जब चलते हैं ऐसे तो अपने आप जो धूल उड़ती है वो हमारे को लगती है, पीछे चलेंगे आगे से रोक के रोकेंगे तो धूल थोड़ी लगेगी, वो तो आपकी धूल उसके मुंह में पड़ेगी और भगत के उड़ के। तो ये बहुत गलत फार्मूला चल रहा है। तो ये जो पहली लाइन है बड़ी महत्वपूर्ण, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। वो भजन का मतलब ये नहीं है जो लोग गांव में भजन गाते हैं बैठ के, और दो भजन के बाद बीच में चाय पीते हैं और तीसरे भजन पे सिगरेट चालू करते हैं, ये भजन नहीं है। वो भजन नहीं है, वो तो है मनोरंजन, वो तो टाइम पास मनोरंजन है, कुछ कविताएं गाते हैं। भजन का मतलब भगवान की सेवा, जो सुमरण करते हैं भगवान का, सेवा करते हैं। अब सुबह उठ के भगवान को उठाना है, भोग लगाना है, ये असल में है भजन। भजन का मतलब, भजन शब्द का सेवा अर्थ है सेवा, और सेवा भी प्रेम से करना। तो उसके लिए, इसलिए क्या कहते हैं गुरु जी के लिए सुबह सुबह क्या प्रार्थना करते हैं, चतुर्विधा भगवत प्रसाना श्री विग्रहाराधन नितानान श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो। तो गुरु जी क्या करते हैं, हमको भजन सिखाते हैं, कैसे भगवान का कैसे श्रृंगार करना है, कैसे उनको भोग लगाना है, कैसे उनकी सेवा करना है, और बहुत सी चीजें, लेकिन एक चीज तो इसको बोलते हैं भजन। उसके लिए अनुकूल क्या है, भक्तों से शिक्षा ग्रहण करना अथवा भक्तों के पीछे चलना। दूसरी लाइन में भक्त सेवा, भगत सेवा परम सिद्धि। परम सिद्धि मीन्स अल्टीमेट परफेक्शन, परम मीन्स द टॉप मोस्ट, और सिद्धि का मतलब परफेक्शन। प्रेम लतिकार मूल, प्रेम लतिकार मूल का मतलब है ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भागीवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद बाय भक्ति लता बीज, ये है वो भक्ति लता बीज। प्रेम भक्ति र मूल, जो प्रेममयी भक्ति है उसका मूल, मूल का मतलब जड़ है। तो क्या है जड़? वो भगत सेवा। वो तो भगत सेवा का क्या अर्थ है? महाप्रभु ने भी यही उत्तर दिया गृहस्थों ने जब पूछा कुलीन ग्राम के कि हम गृहस्थ हैं, हमें बहुत काम काज संसार में है, हम कैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं? तो महाप्रभु ने कहा कृष्ण कीर्तन वैष्णवा सेवन शीघ्र पाए कृष्ण चरण। एक कृष्ण का कीर्तन करो, एक वैष्णव की सेवा करो, और यहां भी कह रहे हैं भगत सेवा। तो भगत की सेवा का क्या अर्थ है? भाई रोटी खिलाना वो तो वैसे भी कोई ना कोई खिला ही रहा है, कपड़े कपड़े धो के देना वो तो रोज पहनना है। भगत सेवा का अर्थ है जैसे भागवत सेवा शब्द है, भागवत में एक शब्द आता है नित्य भागवत सेवा, या नित्य भागवत का सेवन, या डॉक्टर कहता है दवा का सेवन करना। भाई डॉक्टर क्या बोलता है? दवा का सेवन करना, ऐसे बोलते हैं ना, ये दवाई आपका सेवन करना है, इट मीन टू यूज दिस। तो भक्त की सेवा का अर्थ है भक्त के संग में हरि कथा हरि कीर्तन करना। इसलिए गुरुवाणी में बहुत एक लाइन अच्छी आती है, संत सेवा हरि नाम ध्याई। भगवान की सेवा है भगवान का, भक्त की सेवा है भगवान का नाम जपना। भक्त को क्या चीज प्रसन्न है? सेवा किसी क्यों करते हैं? कोई प्रसन्न हो जाए ना, तो भक्त को प्रसन्नता किस बात में मिलेगी? जब कोई भगवान का नाम जपेगा। तो ये भक्त सेवा की जो परिभाषा है वो ये है कि उससे हरि कथा हरि कीर्तन और प्रेरणा मिलती है, जिससे भगवान का स्मरण होता है। श्री प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, भक्त अपने उनके शिष्य ने, कि मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूं? भाई सेवा क्यों करेंगे? बोला आई वॉन्ट टू प्लीज यू। तो प्रभुपाद थोड़ा शांत रह के कहा वेन यू डेवलप लव ऑफ कृष्णा दैट विल प्लीज यू। मेरी सेवा ये है, मेरी सेवा ये है कि आप कृष्ण प्रेम को जागृत कर लो। तो ये भक्त सेवा का अर्थ है, क्योंकि नीचे लिखा ही है प्रेम भक्ति का मूल। तो भक्त की सेवा क्या होनी चाहिए? जो प्रेम भक्ति का मूल है। प्रायः लोग जो है, एक एक बेचारा बहुत सरल व्यक्ति था, गांव से चला गया कहीं महात्मा की सेवा करने के लिए। तो महात्मा जो शिक्षा देता था वो ग्रहण करता था, कथा सुनता था, और फिर शरीर की भी सेवा करता था। मई जून का महीना था, ठंडा पानी ले आता था, अच्छी तरह से स्नान करा। जैसे आपके यहाँ गर्म पानी है, आदमी बाहर तो जलमय ऐसा है, हाँ, तो वहां कम से कम उसको ठंडा पानी में सुबह लाके रखता था बाल्टी, फिर नहलाता था, फिर बादाम लाके और थोड़ा सा ठंडाई दोपहर को दे देता था, और फिर पंखा लेके झेलता था कि सोए। तो महाराज की कथा भी सुनता था, सेवा भी करता था, लेकिन मुख्य कथा सुनी तो महाराज प्रसन्न हो गया, तो खुश हो गया, तो उसका जन्म सार्थक हो गया, भगवत प्रेम वापस घर लौट आया, तो भगवान ने उसकी जो जरूरतें पूरी हो गई, खुश हो गया। तो पड़ोसी ने कहा भाई तुमको ये कहां से लाभ मिला? तो मैं महाराज की सेवा करके है। बोला क्या किया महाराज को? तो उसने बोला महाराज के वहां कथा कीर्तन होता है, महाराज को ठंडे पानी से स्नान कराया, महाराज को मैं बादाम से थादेल पिलाया ठंडाई बनाकर, और महाराज को पंखा झेला पड़ा। ये तो मैं भी सेवा कर सकता हूँ। वो चला गया दिसंबर में, दिसंबर में चला गया, महाराज की कथा के समय तो सोया रहे, और जब सुबह सवेरे हुए तो ठंडा पानी कहीं से ले आए और महाराज को बोला स्नान कराओ। बोला महाराज स्नान नहीं करना है, इसके बाद आपको ठंडाई भी पीनी है और फिर मैं पंखा चलाऊंगा। महाराज ही चल बसा। तो ये अर्थ नहीं है भक्त सेवा का कि उसको नहीं चाहिए ना चाहिए जबरदस्ती उसको, ये सेवा नहीं है। सेवा है हरि कथा और हरि कीर्तन। तो सेवा का लक्ष्य क्या है? प्रेम लतिकार मूल, जो भगवत प्रेम की लता, लता का मतलब क्रीपर प्रेम। वहां क्या है? ब्रह्मांड ब्रह्मेते कोई भागीवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद परमा पाए भक्ति लता बीज। तो वहां लता शब्द है, उस लिए उस बीज का फल क्या है? भाई बीज लगाएंगे तो लता निकलेगी, तो लता का फल क्या है? कृष्ण प्रेम। तो यहां लिखा है प्रेम लतिकार मूल, प्रेम कर लो कृष्ण प्रेम। तो पहली जो सबसे मुख्य भक्ति के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इंग्रेडिएंट डिवोशनल सर्विस के लिए है भक्त का संघ, क्योंकि भक्ति का जन्म ही भक्त संघ में होता है। भक्ति जन्म हईते भक्त संगे। भगवान भक्ति किसी को नहीं देते हैं, दें तो सबको दें, नहीं तो किसी को ना दें, नहीं तो पक्षपात हो जाए, किसी को दें किसी को नहीं दें। इसलिए भगवान ने स्वयं भक्ति देने का काम, सबको रोजी देते हैं, रोटी देते हैं, लाइट देते हैं, हवा देते हैं, ये सबको बराबर देते हैं समान भाव से। इसमें किसी से पक्षपात नहीं है, ना काले का है ना गोरे का है, ना सेठ का है ना गरीब का है, ना राजा का है और ना चोर का है, सबको देते हैं ये चीजें, तो सबको फ्री है, इसमें भगवान इक्वल है। लेकिन भगवान भक्ति किसी को, एक बार बीरबल ने अकबर से पूछा कि मैं बड़ा कि तुम्हारा भगवान बड़ा, तो बीरबल ने कहा महाराज आप बड़े हो हमारे भगवान से। बोला ऐसे कैसे बोलता है, भगवान से मेरे कैसे बड़ा हो गया? पर मैंने महाराज मैं आपको बताता हूं सच, देखो आप किसी के ऊपर नाराज हो जाएंगे तो अपने राज से निकाल देंगे, लेकिन भगवान ने आज तक किसी को नहीं निकाला, तो आप बड़े हुए ना। मतलब उसको इनडायरेक्टली कहने का कि आपका प्रश्न ऐसा है कि आप राजा है किसी को निकाल सकते, लेकिन भगवान किसी की हवा पानी बंद नहीं करता, आप तो कर लेते, तो ऐसे आप बड़े हो गए और क्या निकाल सकते। इसका मतलब है कि कोई भगवान के समान नहीं है, वो तो उल्टी बात उसने कर दी उसको समझाने के लिए। तो ऐसा भक्ति कौन देता है? बोला भक्ति देने का सारा कार्य भगवान ने अपने भक्तों को दे दिया। जैसे एजेंसी कोई कंपनी देती है ना, एक कोई देती है, तो भक्ति केवल भक्त दे सकते हैं, भगवान नहीं दे सकता। और दूसरी लाइन में लिखा है चैतन्य चरितमृत में, आपको भक्ति मिल जाए और भक्ति से भगवान का प्रेम मिल जाए, भगवान मिल जाए, भगवान का प्रेम मिल जाए, फिर भी भक्त संग मुख्य अंग, उसके बाद भी भक्त का संग बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसलिए भागवत में बार बार हमको मिलेगा, ध्रुव महाराज को भगवान का दर्शन तो हो गया लेकिन फिर क्रोध आया, यक्षों को मारने लगा, तब स्वयंभू मनु महाजन ने आके उसको संग दिया, तब शांत हुआ। तो भगवान के दर्शन के बाद भी ध्रुव महाराज को भक्त के संग की जरूरत, पहले नारद भक्त का संग हुआ तब तो भक्ति मिली, और भगवान मिलने के बाद भी उसको भक्त के संग की आवश्यकता थी। बलि महाराज के घर में सीधा सामने वामन देव है, ऐसा किसी का सौभाग्य इस धरती के ऊपर नहीं है। ये गंगा जो सारे संसार को पवित्र करती है, इस भजन में उसका भी नाम आएगा, लेकिन गंगा तो भगवान विष्णु के चरण से निकलती है, फिर ब्रह्मा जी के करमंडल में आती है, फिर शंकर जी की जटाओं में आती है, फिर धरती पे आती है। वही चरण बलि महाराज ने अपने हाथ से धोए, भगवान वामन देव के वही चरण धो के अपने सर पे पानी पिया, तो जो गंगा तीन जगह से होके फिर आती है वो सीधी उसको मिली कि नहीं मिली चरणामृत? इतना भाग्यशाली बलि, भगवान उसको मिले। फिर भी भगवान ने प्रहलाद महाराज को कहा कि इसको संग दो, जाओ इसके साथ सूतल लोक में रहो। मतलब भगवान दर्शन के बाद भी भगवान के भक्त के संग की जरूरत है। पृथ्वी महाराज भगवान के अंश अवतार भी हैं, और उनके 99 यज्ञ जब पूरा हुआ तो भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी के कहने के ऊपर उन्होंने 100 यज्ञ जो है आखिरी यज्ञ को छोड़ दिया, पूरा नहीं किया, क्योंकि इंद्र उसके यज्ञ से भयभीत होके यज्ञ का घोड़ा चुरा रहा था, और चुराने के लिए वो साधु का वेश धारण करके आ गया। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा देखो ये अपराध हो जाएंगे, क्या जरूरत है 100 यज्ञ करने की, ऐसे भी आपका भगवान की भक्ति तो आपके पास है ही। तो उनकी बात मान के यज्ञ बंद कर दिया, तो भगवान विष्णु प्रकट हुए, इंद्र आया और इंद्र को उन्होंने क्षमा कर दिया, इतना कुछ उसने परेशान किया फिर भी पृथ्वी महाराज ने इंद्र को क्षमा कर दिया। तब भगवान विष्णु कहते हैं अब आपको 4 कुमारों का संग मिलेगा, आपके यहां आएंगे तब आप हमारी भक्ति में लगेंगे। तो भगवान के दर्शन के बाद भी 4 कुमारों के संग की जरूरत। तो ये जो पहली लाइन है भक्ति विनोद ठाकुर ने जो साधन लिखा है कि जीवन में कभी भगवत प्रेम को जगाना है, भगवत जगाना है, पाना नहीं है, क्योंकि पाना इसलिए नहीं है कि सबके पास पहले से पड़ा है, पाई वो चीज जाती है जो पहले नहीं हो, लेकिन पाना उस लैंग्वेज में पाना कह सकते हैं कोई चीज खो जाए उसको पाई जाए, हमारी थी खो गई, जैसे आजकल की लैंग्वेज डिस्कवरी बोलते हैं, डिस्कवरी भाई हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिस्कवर कर, तो पहले एग्जिस्ट है तब कर रहे हो ना, पर नया तो नहीं बना रहे हो, तो हमने ये डिस्कवर किया तो पहले एग्जिस्ट था। अभी वो न्यूटन कहता है कि मैंने लॉ बनाया है कि एप्पल नीचे गिरता है, कि उससे पहले एप्पल उड़ जाते थे, पहले भी गिरते थे ये ग्रेविटी का लॉ तो पहले ही था, उसने उसके ऊपर अपना नाम टप्पा लगा दिया क्या ये ग्रेविटी का लगे। तो पहले भी एप्पल गिरते कि नहीं, पहले एप्पल उड़ जाते थे क्या, कि न्यूटन आया तब से नीचे आने लगे। तो ये जो नेम है ये तो पहले से चल रहे हैं, कोई नया नेम नहीं है। तो यहां जो किस बात के ऊपर ये बात आई, क्या कह रहे थे, हरे कृष्णा, वो भक्ति की लता, भक्ति का बीज, प्रेम लतेकार बीज, भक्त का संग मुख्य बात ये कर रहे थे। भक्त के संग से भक्ति भी मिलती है और भक्त से भगवान मिलने के बाद भी भक्त के संग की आवश्यकता रहती है। गोलोक धाम में भी जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि भक्त भगवान वहां वो खड़ा होगा रिसेप्शन के पे, आइए कि आप कहां हैं, गले मिलेगा। वहां भी कोई भक्त होगा जो हमको ले जाए के भगवान से मिलाएगा, वहां भी कोई ऐसा नहीं है। ये जो हमारे अपने गुरुजन है वहां होंगे, वो हमको आंगली से पकड़ के वहां ले जाएंगे। तो वहां भी भक्त की जरूरत है, भगवान को पाने के बाद भी भक्त की जरूरत है, ये मुख्य बात है। तो ये जो पहला लाइन लिखा है इस भजन का, वो भक्ति का सबसे मुख्य अंग है, भक्तों का संग। अब दूसरा क्या जरूरी है, माधव तिथि भक्ति जननी, जतन पालन कोरी, कृष्ण बसती बसती बोली, परम आदरे बोरी, अब कहते हैं भगवान की भक्ति में दूसरा सहायक क्या है, माधव तिथि, एकादशी का नाम है माधव तिथि। माधव मां कहते हैं लक्ष्मी को, धव कहते हैं पति, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु नारायण की ये तिथि का नाम ही है माधव तिथि। और एकादशी का उद्गम स्थान है बद्रिक आश्रम में, वहां भगवान विष्णु से ही प्रकट हुई है एकादशी। और एकादशी का नाम माधव तिथि है, या दूसरा नाम इसका है हरिवासरे, हरि का दिन, या माधव तिथि या हरिवासरे। ये हमको भगवान की भक्ति में सहयोगी है और महीने में दो बार आता है। ये भक्ति के लिए बहुत फेवरेबल तिथि है। क्या अंग्रेज यहां हुकूमत करके गया तो संडे का छुट्टी करके गया, अगर हमारे ऋषियों का हुकूमत होता तो एकादशी एकादशी छुट्टी हुआ करती थी कि कथा करो, कीर्तन करो, भजन करो। तो ऐसा नेम ऐसे बनना चाहिए था, क्योंकि जो जो चीज हमारी सेवा की, जैसे भाई यहां होता है रमजान आया तो महीना पूरा छुट्टी है, तो ये हमारा कम से कम महीने में दो दिन का एकादशी का छुट्टी नेम था, होना ऐसे चाहिए था। लेकिन क्या कि जो जिनका रूल था उन्होंने अपने नेम अपने बनाए हैं। तो हमारे पूजा प्रतिष्ठा का ये एकादशी का तो महीने में दो छुट्टियां ऐसे हो जाती, बाकी दो अपने वैसे आपने देखा है हमारी छुट्टी नहीं होती, लोगों की फ्राइडे छुट्टी है, हमारे सबसे ज्यादा सेवा होती। तो असल में हमारी छुट्टी हॉलीडे तो है ही नहीं, हमारा हॉलीडे है सारे। भाई छुट्टी कैसे, भगवान का जो पहला भक्त है, भगवान श्री कृष्ण का पहला शिष्य सूर्य देव आज तक छुट्टी नहीं की। तो भगवान के भक्त को कार्यरत रहते हैं, छुट्टी होती नहीं है, भगवान ही छुट्टी नहीं करता, दिल में बैठा हुआ है, दिल को धड़कता रहता है, चलाता रहता है। वो जो छुट्टी करे तो हमारा दिल ही बंद हो जाए, वो छुट्टी करे तो हमारे सब काम ही बंद हो जाए। तो भगवान ऐसा काम नहीं कर, छुट्टी कम कभी करते ही नहीं, वो तो सांस चला रहा है, दिल चला रहा है, भोज भोजन पका रहा है, एक दिन भी छुट्टी नहीं करता। तो हमारा भी सेवा निरंतर रहनी चाहिए। तो माधव तिथि भक्ति जननी, शब्द लिखा है भक्ति जननी, मैंने भक्ति को जन्म देने वाली है। इसका मतलब जो वो जतने जतने पालन करी, जतने का मतलब केयरफुली, जतन कहते हैं केयरफुल को, बहुत सावधानी से बड़े आदर के साथ उसको पालन करना चाहिए। पालन करना चाहिए का मतलब उस दिन क्या करना है, क्या करना ये है कि उस दिन अनाज नहीं खाना है, नो ग्रेन्स। उस दिन ग्रहण के अंदर पाप का निवास होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि उस दिन ग्रहण में पाप का निवास होता है। ये शास्त्र की मर्यादा है। शिला प्रभुपाद ने तो इसके भावार्थ में लिखा है कि अगर एक दिन अन्न नहीं खाए आदमी, ग्रहण नहीं खाए, तो दुनिया में जो गरीब भूखे लोग हैं उनके लिए अन्न इतना बच जाए कि सबकी पूर्ति हो जाए। और दूसरा उन्होंने बोला कि ये एक दिन की हमारी तपस्या भी है और हेल्थ के लिए बहुत फेवरेबल है, एक दिन रेस्ट मिलनी चाहिए सिस्टम को भी। लेकिन वो दूसरी बात है कि एकादशी के दिन हम आम दिनों से ज्यादा ही खाते हैं और तीन दिन पहले सोचते हैं कि क्या आइटम बनाएंगे एकादशी के। आम दिन में तो दाल चावल खा के काम चला लेते हैं, सब्जी कोई रोटी हुई, एकादशी का बहुत बड़ा एडवांस मेनू तैयार होता है। हमने एकादशी को फेस्टिवल समझ लिया है तपस्या के लिए, लेकिन हमने उसको बहुत जो है फेस्टिवल बना रखा है। तो एकादशी जतन से पालन करना चाहिए, केयरफुली। चेतना महाप्रभु अपनी माता सची को कहा कि मां एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना है, उसको सावधानी से बोला आपको ये पालन करना चाहिए। तो ये एकादशी को माधव तिथि है, भक्ति की जननी है, वो भक्ति लत्यकार बीज है, ये उसकी जननी है। कौन सी फेवरेबल चीजें भक्ति के लिए, जैसे एकादशी भक्ति फेवरेबल है, आइटम क्या क्या फेवरेबल होते हैं भक्ति के लिए, ये सारे ही असल में इन सब का नाम है भक्ति के बीज है। ये यहां जब यहां लिखा है ना, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, भक्ति की लता का बीज कृष्ण कृपा से भक्त साधु गुरुजन देते हैं। तो भक्ति का बीज क्या है? भक्ति का बीज हरे कृष्ण मंत्र नहीं है, वो तो भगवान है, वो भक्ति का बीज नहीं है। भक्ति का बीज है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। जो भक्ति का बीज है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस गिवन बाय बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो भक्ति का बीज श्रद्धा से पालन करना, रूल्स ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसमें नाम नहीं है, इसमें हरे कृष्ण मंत्र नहीं, वो नहीं है, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है। भक्ति का बीज आज याद कर लीजिए, भक्ति का बीज कभी हरे कृष्णा उत्तर न मत देना, भक्ति का बीज मंत्र नहीं है, मंत्र तो भगवान है, वो तो नाम प्रभु है, वो बीज नहीं है भक्ति का। भक्ति का बीज है रूल्स एंड रेगुलेशन, जो नेम है ये पढ़ रहे हैं ये सब भक्ति के बीज है। ये के भक्ति के बीज का जो गुरुजन देते हैं नेम, वो सब भक्ति का बीज है। और तीसरा क्या बोल दिया, ये हो गए भक्त, पहले हो गया भक्त और दूसरा हो गया तिथि, माधव तिथि एकादशी की तिथि, ये पालन करना। इसलिए एक महात्मा होते थे, मैं कभी जाता था गोवर्धन, बहुत पुराने 100 साल हो गए थे, जो भी आता था उसने बोलता एकादशी का पालन किया करो, वो एक चार्ट छपा हुआ था, बोलता ये पालन का समय ले जाओ, जब एकादशी करो द्वादशी कब खोलनी है ये भी देख लो। तो सबको एक ही बात कहता और कुछ नहीं कहता, बोले एकादशी का पालन करो, उसने सबको एक ही आदेश देता था। तो ये एकादशी भक्ति की जननी है, इसमें अज्ञात रूप कोई नहीं जानते हुए भी रखता है तो उसको लाभ होता है। एकादशी के दिन कई भक्तों को लाभ केवल सिर्फ एक दिन के व्रत से भी हुआ, ऐसे बहुत सी कथाएं शास्त्रों में मिलेंगी। हाँ, वो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज कथा बताते हैं, एकादशी कभी वो कोई मोहम्मदन था, वो बहुत बड़ी सेवा कर रहा, बोला कैसे क्यों कर रहे, बोला एकादशी के दिन मुझे एक बार लाभ हुआ तब से मैं ये व्रत रख रहा हूं, कथा कोई बताते रहते हैं। तो तीसरी बात क्या है, कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरे बोरी, ये है धाम में जाना। कृष्ण बसत जहां बजा कृष्ण बैठे, इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण के लीला के जो भी स्थल है, वृंदावन है, मथुरा है, द्वारका है, जहां जहां भगवान ने लीला की बड़े आदर से वहां जाकर दर्शन करना चाहिए। तो ये कौन सा अंग हो गया भक्ति का, धाम निवास, धाम का दर्शन। अब ये क्या है, छुट्टियां तो सबको मिलती हैं साल में एक दो बार, आप जाते भी कहीं हैं। अगर आप वृंदावन जाएंगे, अगर आप हरिद्वार जाएंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे, तो बच्चों को और आपको वापस आएंगे तो ये कहेंगे अरे भाई हमने ये मंदिर देखा था, बच्चे बोलेंगे हमने गंगा में स्नान किया था, कोई कहेगा हम जो है कृष्ण बलराम मंदिर गए थे वहां कीर्तन। तो यहां आपके साथ भक्ति के ही कुछ वातावरण आएगा। और छुट्टी में कहीं चले गए आप, मानो के सिंगापुर गए के हांगकांग गए, तो वहां से आके वहां क्लब था वहां ये था वो आएगा, तो आपके साथ जो आएगा वो चीज आएगी जहां जाओगे। तो ये तीर्थ यात्राओं में जाने से आदमी रिचार्ज होके आता है स्पिरिचुअली, वहां का वातावरण जो है वहां की जो वाइब्रेशंस है वो स्पिरिचुअली रिचार्ज करती है हमारे को, और बहुत समय उसका असर रहता है, प्रभाव रहता है। अब जब भागवत पूरी पढ़ेंगे आप, पढ़े अब हम भागवत की कथा करें कि गोवर्धन की तलहटी में बहुत अच्छी जगह कुसुम सरोवर है, वहां असल में गोपियां फूल चुनने आती थी और भगवान श्री कृष्ण के लिए माला बनाती थी। ये बात आपके दिमाग में अटकेगी नहीं जब तक आप कुसुम सरोवर देखा नहीं होगा, जब तक वो जगह नहीं देखी हुई तो ये कथा आपको मतलब ऐसे इसको समझ नहीं पाएंगे। अब जो चीज आपकी देखी हुई है उसको सुनते ही एकदम आपको उसको कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन जो देखी नहीं है उसको कोरिलेट करना मुश्किल है। तो भगवान की कथाओं का रस तब आएगा जब भगवान की उन सब लीला स्थलियों को देखा हुआ है, नाम लेते ही वो जगह आपको दिखने में आ जाएगी, जैसे नाम लेंगे वो जगह ही दिखने आ जाएगी। तो आदर से जाके भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थलियों का, वृंदावन मथुरा द्वारका उज्जैन में जाएं तो भगवान 64 दिन रहे हैं, और भी जहां कुरुक्षेत्र जाएं ये सब भगवान की लीला स्थलियां हैं, इन सब जगहों के भगवान की लीला है। तो इन यहां आदर से जाना चाहिए। अब तीसरी लाइन में कहते हैं कृष्ण के लीला के स्थलों के लिए क्या लग को बोला, बड़े आदर के साथ। आदर का मतलब किसे, आदर शब्द कहां से आया, जिससे हृदय में अपमान होने का डर रहता है, डर का मतलब है डर, आदर में जो डर है डर का मतलब है डर, किस बात का डर, कहीं गलती ना हो जाए, किसी बड़े आदमी को सेवा करते हैं तो अपराध ना हो जाए, तो धाम में अपराध ना हो। आदर शब्द का अर्थ है अपराध से बचे, धाम में जाए। अब क्या है आजकल जो बॉम्बे जो वृंदावन जाते हैं वो समझते हैं वृंदावन गए, हमारी नजर से कभी वृंदावन नहीं आते, काहर से उतरते हैं, मार्बल पे पांव रखते हैं, बिस्लरी का पानी पीते हैं और वापस घर आते हैं, तो वृंदावन कहां गए, ना तो ब्रज की रज में लौटे ना जमुना के पानी को हाथ लगाया, हाँ तो कहां ब्रज उन्होंने देखा, ब्रज में चले ही नहीं, ब्रज की रज को ही नहीं देखा, तो कोई लाभ क्या हुआ उधर जाने का। बहुत से लोग ऐसे, और फिर जब भी जाते हैं यात्राओं में, आप जब भी कभी कोई यात्रा ले जाते हैं दो ही चीजें लोग पूछते हैं, प्रसाद कहां है, कमरा कहां है, अरे ये तो घर में ही खा रहे थे, यही पूछने आए हो क्या, दो ही प्रश्न होते, प्रसाद कहां है, कमरा कहां है, प्रसाद कहां है, कमरा कहां है, अरे भाई ये नहीं पूछते आज कहां दर्शन करने, कोई नहीं पूछता, हमने बहुत यात्राएं करके देख ली, दिमाग में सिर्फ दो ही चीजें, प्रसाद कहां है, भोजन कहां है और कमरा कहां है, अरे बाबा भूलो इसको, यात्रा इसलिए लाए हैं कि ये बात आपको भूल जाए, ये पूछो कि आज कौन सी लीला कहां हुई थी, ये कथा कब करेंगे, वो तो ऑप्शनल है, वहां जाए ना जाए। तो यहां ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यात्रा में आदर होना चाहिए, इसको कहते हैं धाम अपराध, जैसे नाम अपराध है ऐसे धाम अपराध है, तो धाम में अपराध ना हो जाए, आदर का मतलब अपराध से बचना, कृष्ण लीला में अपराध से बचने की बात करें। अब गौर लीला को क्या बोलते हैं, देखें गौर हमारा जे सब स्थान है, करे लो भ्रमण रंगे, से सब स्थान हरि वो आमी, प्रणय भक्त सांगे, गौर हमारा है, यहां भगवान को सीधा बोल दिया हमारा है, चैतन्य महाप्रभु हमारा है, हमारा क्योंकि वो भक्त अवतार में है तो उसको हमारा कहना है, कृष्ण को हमारा कहने में थोड़ा सा आदर रखा है, और चैतन्य महाप्रभु क्या बोलेगा, गौर हमारा भाई, कौन है, कौन हमारा है, अपना है, क्योंकि वहां वहां अपराध नहीं है, जो जो नवद्वीप मायापुर धाम है वहां किसी को कोई अपराध नहीं लगता है, क्योंकि औदार्य धाम है, औदार्य धाम है, उधार धाम है, वहां पापी तापी सबका उधार होता है, वृंदावन औदार्य धाम नहीं है, माधुर्य धाम है, अगर प्रेम है तो वहां प्रवेश मिलेगा, प्रेम नहीं है तो वहां से भगा दे, लेकिन मायापुर औदार्य धाम है, ब्रजमंडल औदार्य धाम है, सॉरी गौर मंडल औदार्य धाम है, वहां किसी को वहां धाम का कोई अपराध है ही नहीं, वहां तो अपराध सबका क्षमा हो जाता है, इसलिए कहते हैं पहले पहले गौर मंडल में रहकर अपराधों से मुक्त होकर फिर वृंदावन में प्रवेश करना चाहिए। गौर मंडल में दास भाव है, सब सेवक के भाव में, तो वहां से पवित्र होके फिर आना चाहिए, हृदय पवित्र करके, ये इस सामान्य रूप से ऐसे कहा जाता है। गौर हमारा जे सब स्थाने कौरिबो भ्रमण रंगे, जहां जहां चैतन्य महाप्रभु ने भ्रमण किया, रंगे का मतलब प्रेम में, जैसे श्रीमद् भागवत है, कृष्णेर अंग प्रति अक्षर प्रति श्लोके गोपी कृष्ण नाना रंग, वह शब्द नाना रंग, रंग का मतलब अलग अलग भावों में, महाप्रभु ने अलग भावों में भ्रमण किया है, जैसे काश जैसे अगर आप गया जाएं तो वहां महाप्रभु का भाव क्या है, पितरों का तृपण करने गए हैं और गुरुजी से आपका संग मिला है, तो वहां उनका भाव दूसरा है, जब महाप्रभु दक्षिण भारत में गए हैं तो उनका भाव दूसरा है, हरे कृष्ण बोलो बेटा, क्या हुआ, इसको गुस्सा किसने दिला दिया, कि सो गया क्या, गुस्सा आ गया, हरे कृष्ण, गौर अमारा जे सब स्थाने, अब जैसे भाव है, या रंगे का मतलब भाव में, अब दक्षिण भारत में गए चैतन्य महाप्रभु तो जहां जहां गए हैं वहां गली गली में हरे कृष्ण कीर्तन गाया है, वृंदावन आए हैं तो दूसरा भाव है, तो जिस जिस भाव से जहां जहां चैतन्य महाप्रभु ने भ्रमण किया है उन सब से सब स्थाने हेरी वो आमी, उन सब स्थानों के मैं ऊपर जाके दर्शन करूं। बोला कैसे करोगे, तब एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण लाइन लिख दिया, प्रणयी भक्त संगे, किसके साथ में, प्रणयी भक्त संगे, क्योंकि महाप्रभु के भावों का हमारे को कौन समझाएगा, वह जो बोला प्रणयी भक्त है, प्रणयी भक्त किसको बोलते हैं, वैसे इसका हिंदी सरल हिंदी में इसका अनुवाद करेंगे तो प्रेमी भक्तों के संग में, क्योंकि प्रणय प्रेम का पांचवा स्तर है, अंग्रेजी में एक ही शब्द है लव, और कोई शब्द है नहीं, प्रेम स्नेह, प्रेम के बाद है स्नेह, स्नेह के बाद है मान, मान के बाद है प्रणय, स्नेह प्रेम स्नेह मान, सॉरी प्रेम स्नेह मान प्रणय भाव महाभाव, ऐसे प्रेम का स्टेज बहुत ऊपर ऊपर की है, और प्रणय शब्द के लिए राधा है कृष्णेर प्रणय विकार, राधा रानी क्या है, जब श्री कृष्ण के हृदय में प्रेम अपने आप गाढ़ प्रकट होता है तो उनसे राधा रानी प्रकट हो जाती है, उनके अंदर से प्रकट होती है, तो राधा रानी क्या है, कृष्ण भगवान का प्रणय विकार है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कृष्ण, कृष्ण ट्रांसफॉर्म होकर राधा होती है, कब, इसका अर्थ क्या है, राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, जब प्रेमी और प्रेम में कोई अंतर न रहे, देयर इज नो डिफरेंस, जैसे गोपियां रास से जब भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं तो श्री कृष्ण का अभिनय करते हैं, क्यों डर रही हो, मैं खड़ी हूं ना, क्या करेगी पूतना, तो ये गोपियां कृष्ण के भाव में बोलती है, इसको बोलते हैं प्रणय, प्रणय का मतलब वो भक्त जो भगवान से अभिन्न अपने आप को मानते हैं, अभिन्न किस बात में मानते हैं, इंटरेस्ट में, प्रणयी भक्त उनको बोलते हैं, वो जो रसिक भक्त जो भगवान के प्रेम के भाव को जगह जगह को जानते, ऐसे भक्तों के संग में जाऊंगा मैं यात्रा करने, ऐसे नहीं है भाई कैसे टूरिस्ट के माध्यम से जाऊंगा, कोई टूरिस्ट घुमा के आएगा। आजकल लोग टूरिस्ट के माध्यम, टूरिस्ट को बोला गाड़ी बुक कर दो हमको वृंदावन देखना है, वो नंदगांव देखना है, दिस इज नॉट देखना है, वो प्रणय भक्त संगे। तो कितने गौर मंडल का, गौर मंडल को छोड़ के चैतन्य महाप्रभु ने कहां भ्रमण किया है? आदि भारत का भ्रमण किया है, पैदल किया है, कोई गाड़ी में नहीं चढ़े, हाँ पैदल भ्रमण किया है। कहां से कहां तक किया है? बांग्लादेश से लेकर और कन्याकुमारी तक, बांग्लादेश से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से बंबई तक और बंबई से जगन्नाथपुरी और जगन्नाथपुरी से सारा झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पूरा वृंदावन 6 साल पैदल चले हैं महाप्रभु, पैदल भ्रमण किया है। और जहां जहां गए हैं प्राय एक भक्त साथ होता था, जहां जाते थे बहुत भक्त इकट्ठे हो जाते थे, उन्हीं भक्तों के साथ कीर्तन भजन, ऐसे नहीं अपने साथ मंडली लेके घूमते गए कि तबले वाला और ढोलक वाला, कुछ भी नहीं था वो कीर्तन करते थे लेकिन ऐसा कुछ नहीं उठाते थे। महाप्रभु के पास कोई मंडली वंडली नहीं थी, था क्या कुछ? था क्या? नहीं, जहां जाते कि अपने आप सब उधर के लोकल इकट्ठे हो जाते थे। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो क्या साथ में मंडली कोई ले गए थे क्या? अकेला ले गए थे कीर्तन करने, सब भक्तों को बाहर जाके बनाए। अब अपना ही सब लाएगा तो यहां कहां बनाएगा, उनको ही मेंटेन करने में लगे रहोगे, आप दूसरों को कोई सेवा ही नहीं कर सके, उनकी चाकरी में पूरी आधा दिन गुजर जाएगा, उसको मिला के नहीं मिला, नहीं तो तबले वाला गलत बजाएगा तो मेरा सांग खराब हो जाएगा, वो चिंता ही उसकी रहती है, वो सामने सुनने वालों की चिंता ही नहीं रहती। तो अकेले गए थे महाप्रभु, अकेले घूमे। एक बार बहुत से सब लोग साथ गए तो रूप सनातन गोस्वामी ने कह दिया नहीं नहीं इतने लोग इकट्ठे लेके यात्राओं में जाना ठीक नहीं है, यात्रा तो अकेले करनी चाहिए। तो उन्होंने इस बात को अच्छा समझ के मान लिया और महाप्रभु ने अकेले ही किया। राजी हो गया? नाम क्या है इसका? आधार हरे कृष्ण। यार तू गुड बॉय है ना? आकाश है, तेरे लिए टॉफी लाया था देनी थी, तुम नाराज हो गया हमसे, क्या करें, देंगे देंगे। तो प्रणयी भक्तों के संग में जब भी यात्रा में जाएं तो प्रेमी भक्तों के संग में जाना चाहिए, क्योंकि वो जब कथा करेंगे तो वहां आपको भगवान की लीला दिखेगी। वो जब कथा करेंगे, हमारा यह अनुभव है कि बहुत से लोग कथा सुन के कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने कान से कथा सुनी लेकिन कथा को जैसे जैसे हमारे सामने वो लीला हो रही है, तो वहां जब लीला जो कथा बताएगा उसका भाव जो होगा, अब एक पंडे की कथा बताएंगे वो भी लीला वही बताएंगे, लेकिन उसकी लीला बताने के पीछे उनके दिमाग में आएगा इससे पैसा कितना लेना है, तो वो लीला आपके कान से अंदर जाएगी नहीं, वो लीला कान से जेब में जाएगी कितना निकालना है वो दिल में नहीं जाएगी। हाँ, उस लीला का जो रूट होगा ना वो बदल जाएगा कि ये कब जान छोड़ेगा और कितना मांगेगा, तो वो लीला वही बताता है। वो हमसे अच्छे श्लोक भी बोल देगा, हमसे अच्छा उसकी कथा भी पूरी बताएगा, लेकिन वो जैसे टेप में होती है ना, जैसे उनके अंदर कैसेट डालो बटन दबाओ वैसे ही चलेगा, उसका कोई भाव नहीं होता है और उसका अपना कोई आदर भी नहीं है उसके प्रति, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भक्तों के संग में जाएंगे तो वो कथा जो होगी वो कथा रसमयी हो जाएगी और वो लीला आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगी, स्फुरित होने लगेगी कि ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब तीसरा लाइन, चौथा लाइन पढ़ते हैं। अब ये क्या हो गया? तीर्थ यात्रा और भक्तों का संग। फिर मृदंग वाद्य सुनिते माना,
मृदंग वाद्य सुनिते माना,
अवसर सदायाचे, गौर विहित कीर्तन सोने, आनंद हृदय नाचे, मृदंग वाद्य जहां कहीं मृदंग का आवाज सुनाई दे, सुनीते मन अवसर सदा याचे, ऐसे मौका ढूंढता रहता है कब ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कहीं से मृदंग का आवाज आए। जैसे प्रेमी ब्रजवासी गोपियां भगवान की बांसुरी के सुनने के लिए लालायत रहती थी कब सांसुरी बजेगी। ऐसे मृदंग चेतना महाप्रभु की लीला की बांसुरी है। जहां मृदंग का कीर्तन होता है तो भक्त कहते हैं कब कब कीर्तन होगा, कब ये कीर्तन चालू होगा, वहां जाएंगे तो ऐसा मौका ढूंढते हैं। बोला वहां मिलेगा क्या मृदंग जहां बजता हुआ। बोला गौर विहित कीर्तन सुनी। गौर विहित का मतलब जैसे चेतना महाप्रभु ने कीर्तन का ढंग सिखाया है, जैसे उन्होंने प्रोसेस सिखाया, ऐसे नहीं कि आजकल वो भूत वाले इलाके वहां जो अफ्रीका में भूतों के लिए बजाते हैं ब्रह्मा ब्रह्मा, ये कीर्तन महाप्रभु का नहीं है। ये जो भूतों वाला आया है अभी, ये तो ठीक है नौजवान बच्चों के लिए कुछ भी बेंगो बेंगो कुछ भी बजाओ, लेकिन मंदिर के अंदर भगवान के सामने मृदंग और खड़तार वाला कीर्तन होना चाहिए। बाहर जो करना है वो करो। गौर भेद जब डाल के, एक भेद डाल के भक्ति विनोद ठाकुर ने, भक्ति विनोद ठाकुर थे जज, और जब कोई जजमेंट लिखी जाती है ना तो उसमें कोई लूप होल नहीं छोड़ा जाता है, तो उनके ये जो भक्ति का साधन बताया उसमें भी कोई लूप होल नहीं छोड़ा, जैसे आए वैसे कीर्तन नहीं करे। अब मैं सुन रहा था कीर्तन मेले जैसे हमारे पास बहुत शुरू हो रहे हैं। अब कीर्तन मेले की जरूरत इसलिए पड़ गई कि कीर्तन ही लोगों को भूल गया, कीर्तन करना ही छोड़ दिया, इसलिए मेले की जरूरत पड़ गई। तो कुछ महात्मा जो हमारे अपने महाराज मानते हैं, देखो अपना कीर्तन करना अच्छा है अकेला बैठ के करे ठीक है, उससे अच्छा है कि भक्तों के संग में करे, उससे अच्छा है कि आम आदमी सुने वो कीर्तन करे। इसका मतलब संकीर्तन बाहर होना चाहिए। कीर्तन मेला तो हम चार दीवारी के अंदर करते हैं, उसमें बाहर का आदमी तो कोई नहीं सुनता है। तो ये चेतना महाप्रभु का मत नहीं है, महाप्रभु का मत तो रोड का है, आपके देश की बात हो रही है उसको छोड़िए, जनरल बात कर रहे हैं। ये इंद्रद्युम्न महाराज का कमेंट है जो गिरिराज महाराज बता रहे थे। मैं कहता हूं ये जो सीनियर डिवोटी है उनका ऑब्जर्वेशन का है बता रहे हैं। अभी क्या है कि कीर्तन मेले में ऐसे कीर्तन करने वाले आते हैं, उनको कीर्तन बहुत अच्छा करना आता है, लेकिन कीर्तन करने के बाद कृष्ण प्रेम उनके पास नहीं है, उनके बाद उनकी जो एक्टिविटी संसार की बहुत ज्यादा हमसे है। आप देख लीजिएगा दो महाराजों को छोड़ के दो चार को, बाकी जो नौजवान आते हैं कीर्तन मेले वाले उनका अपना स्टाइल दूसरा होता है कि नहीं है, ये सच है कि झूठ है? वो किसको कीर्तन से प्रसन्न करते हैं, कृष्ण को करते हैं कि कृष्ण की प्रकृति वालों को करते हैं, हमको आज तक नहीं समझ में आया। लेकिन इतना देखा है कि दो चार साल के बाद लड़की उनके साथ दूसरी होती है। ये मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन ऐसे मैं आपको दिखाऊं ऐसे बड़े अच्छे कीर्तन वाले, तो अभी एकादशी के दिन मुख से निकल गया तो क्या करूं, अंदर से आ गया है, लेकिन ये कीर्तन नहीं। अब ऐसे चार पांच उदाहरण मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, आपको देखा है कि नहीं, आप सबने देखा हुआ। तो ये नहीं कीर्तन, कीर्तन का मतलब है जिसमें लोगों के हृदय में भगवान के प्रेम को जगाया जाए। एक कीर्तन मेले में मायापुर था, लोकनाथ महाराज कीर्तन गा रहा था तो उस कीर्तन में आंखों से आंसू आ रहे थे, एक भाव ही दूसरा हो जाता। और फिर दोबारा गया मैं, जो भी कीर्तन वाले को भी जो भी कुछ गा रहे थे वो गाने दो, कोई लोग बैठे हैं नाचे हैं गाए कुछ भी करे, लेकिन वो भाव नहीं आता है वापस। एक बार प्रभुपाद जी ने कीर्तन किया लॉस एंजल्स में नई जगह में, और प्रेम ध्वनि तक सबके आंखों में आंसू थे, सबको लगा ऐसा कीर्तन का कभी अनुभव हुआ ही नहीं। अब कोई ज्यादा शाज नहीं, आवाज नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन कीर्तन में जो भाव उसके हृदय की शुद्धता है वो प्रभाव डालती, और साज आवाज प्रभाव नहीं डालते हैं, जो उनके हृदय के भाव है वो प्रभाव डालते हैं। तो ये जो कीर्तन गौर विहित कीर्तन जो चेतना महाप्रभु ने कीर्तन का नेम बनाया है, उस नेम से कीर्तन, वो जब कीर्तन सुनते हैं तो क्या होता है, गौर विहित कीर्तन सुने, गौर विहित कृष्ण गौर कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे, आनंद में हृदय में पांव वाला नाचना नहीं कह रहा, हृदय नाचे, हृदय नाचे का मतलब है अंदर में आनंद का एक लहर उठता है वो कीर्तन। और ऐसा जब कीर्तन में आनंद होता है हृदय में, तब आंखों में अपने आप आंसू आने लगते हैं, वो हृदय के नाचने की जिसको कहा जाए परिणाम है। तो ये हो गया चौथा अंग भक्ति का, तीसरा चौथा अंग जिसमें कीर्तन, कीर्तन भक्ति का मुख्य अंग है असल में। अब आगे कहते हैं, जुगल मूर्ति देखिया मोरा,
जुगल मूर्ति देखिया मोरा,
परम आनंद होय, प्रसाद सेवा करिते होय, सकल पर पंच जाय, जुगल मूर्ति है राधा कृष्ण का नाम, जुगल राधा कृष्ण मूर्ति मतलब मंदिर में जाना, ये हो गया श्रद्धायाय श्री विग्रह पूजन, पांच अंग भक्ति में एक अंग है प्रेम से भगवान के श्री विग्रह की पूजा करना। तो युगल मूर्ति देखिए मोरा, परम आनंद होए, भगवान का सुंदर दर्शन करने से बड़ा आनंद मिलता है। युगल मूर्ति राधा कृष्ण को कहते हैं, सीताराम युगल मूर्ति कहलाती है, लक्ष्मी नारायण भी युगल मूर्ति है, लेकिन युगल में जो प्रेम है वो जितना राधा कृष्ण में है वो भाव का प्रेम, और वो भी सब युगल मूर्तियां कहलाते हैं। वैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही युगल मूर्ति है, राधा कृष्ण दोनों उसमें, वो भी जो भी युगल मूर्ति को देखने से मन में बड़ा आनंद होता है। अब कहते हैं, अब इससे ये बात सीधी लगती है कि जहां प्रसाद, जहां मंदिर में जाएंगे भगवान का दर्शन करेंगे कीर्तन करेंगे तो क्या मिलेगा, प्रसाद सेवा, प्रसाद सेवा, प्रसाद भी सेवा लिखा है, खाना नहीं लिखा है, प्रसाद का सेवन करना है, सेवन करना जैसे दवाई का सेवन करते हैं, ये प्रसाद का सेवन है, बड़े आदर के प्रसाद सेवा कोरी होए, सकल परपंच नाश, सकल परपंच मतलब आल एंग्जाइटी, आल जो दुख है, ताप है, संताप है, परेशानी, वो सब नाश हो जाती है, प्रसाद भगवान की कृपा है। और कृष्ण भावना अमृत संघ में श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मैंने इस कान की स्थापना, प्रभुपाद जी पिट्सबर्ग एयरपोर्ट से जा रहे थे न्यू वृंदावन, और अर्ली डेज थे, समझो 70s होगा मैक्सिमम, 3-4 साल हुए थे इस्कान स्थापना के। बोला ये इस्कान की स्थापना वर्ल्ड वाइड हमने दो चीजों से की, एक तो भगवत नाम का कीर्तन, मधुर कीर्तन, गौर कीर्तन वेत, और दूसरा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितने 99% भक्त पुराने देखेंगे तो उनसे पूछे भक्त कैसे बने, बोला प्रसाद को पाके। तो प्रसाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट भरने के लिए, तो रोज रोज आदमी रेस्टोरेंट में भी खा रहा है, लेकिन भगवान का प्रसाद कीर्तन के बाद खाने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो जैसे डॉक्टर बोलता है दवाई लो और परहेज करो, भाई कोई डाइट होती है ना हरे की अपने, तो हमारी भौतिक बीमारी की दवाई है हरे कृष्ण नाम, औषधि है, नाम को या भगवान की कथा को औषधि माना गया, दवा ये औषधि है, नाम औषधि है, और ये जो प्रसाद है ये डाइट है, ये परहेज है, ये दो चीजें करेंगे तो रोग चला जाएगा। तो ये रोग जाने का बहुत सरल साधन है। क्या टाइम हो गया, हाँ 1:40 हमको जाना भी है, अच्छा कथा बहुत अच्छी है, चलो। तो प्रसाद बड़े आदर से पाने से हमारा सब, एक प्रभुपाद जी का एक 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 स्टेटमेंट है, व्हेन वी पार्टेक प्रसाद टुगेदर ऑल द डिफरेंसेस आर रिकनसाइल्ड, ये प्रभुपाद जी एक स्टेटमेंट है, जब हम साथ में बैठ के प्रसाद खाते हैं ना तो सारे कम्युनिकेशन गैप परेशानी सब खत्म हो जाती है। पहले हमारे घरों में भी दादी सबको बिठा के प्रसाद साथ खिलाती थी तो सब साथ रह सकते थे, और ये सिकंदर ने कहा था, अलेक्जेंडर ने, कि सामने पोरस की सेना वाले अगर 5 जगह पे आग जला के भोजन बना रहे हैं, एक दूसरे का नहीं खाते हैं, जो साथ खा नहीं सकते हैं वो साथ लड़ भी नहीं सकते हैं, साथ रह भी नहीं सकते। इफ यू डोंट ईट टूगेदर यू कैन नॉट लिव टूगेदर, इट्स नॉट पॉसिबल, साथ खाओगे तो साथ रह सकते हो और साथ एक दूसरे की साथ दे सकते हो। तो ये प्रसाद हमारे अंदर, जिसको इसलिए गौरंग महाप्रभु का एक कहावत है, संग चालो हरि बोलो, तो संग चालने के लिए प्रसाद बहुत जरूरी है, हरी बोलो, संग चालना बहुत, मतलब साथ चलने के लिए, यूनिटी के लिए प्रसाद साथ में खाना बहुत जरूरी। प्रसाद के समय सब साथ बैठे। अब आगे वाले, जे दिन ग्रह भजन देखी, गृहैते गो लोक भाय, आज हमारे संतोषा और प्रवीण के घर, जैसे जे दिन, जिस दिन गृह घर में भजन देखी, भजन देखी मतलब हरि कथा कीर्तन हो रहा है, भागवत सेवन हो रहा है और आगे अभी क्या प्रसाद सेवन हो रहा है, तो ग्रहिते गोलोक भाय, तो समझ लो ये ग्रह ये घर गोलोक हो गया, ये वो घर ही गोलोक हो जाता है जहां हरि कथा हरि कीर्तन हरि प्रसाद होता है, नहीं तो घर में ग्रह ही रहते हैं, गोलोक नहीं होता है, वो ग्रह से ग्रह होते हैं, नौ के नौ ग्रह। और दूसरी लाइन में कहते हैं चरण सिंधो चरण से दो देखिया गंगा, सुख नसी मा पाय, चरण सिद्धु, चरण सिद्धु का मतलब भगवान का चरणामृत, जो भगवान का चरणामृत स्नान कराते हैं वो क्या है, देखिया गंगा, जैसे गंगा घर में देख ली भाई, गंगा तो भगवान के चरण से निकली है ना, तो ये जो चरणामृत मंदिर में जाते हैं मिलता है, ये जैसे हमारे को गंगा हमारे घर में आ गई और उसको देखते ही या तो गंगा का दर्शन हो या भगवान का चरणामृत मिले तो सुख न सीमा पाए, उसका बड़ा हमको सुख मिलता है। और फिर एक और आइटम जो जरूरी है भक्ति के लिए, उसके लिए कहते हैं तुलसी देखी जोड़ाए प्राण, माधव तो श्रेणी जानी, तुलसी अगर देख दर्शन हो जाए तो जुड़ाए मन, मन में बहुत बड़ा आनंद आता है, प्रेम हो जाता है, क्यों, क्योंकि माधव तोषणी जानी, भगवान माधव को बहुत संतुष्ट करती है, भगवान के कोई भी भोज छप्पन भोग लगाओ तुलसी नहीं है तो नहीं अर्पण होता है, तो तुलसी घर में अगर है आप दर्शन करते हो परिक्रमा करते हो तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान की प्रसन्नता पाता है। असल में अभी समय नहीं है, नहीं तो कहें तुलसी की पूजा रागनों का भक्ति है, कि तुलसी भगवान की प्रेम ही है और हमारे को भगवान के प्रेम, नमो नमा कृष्ण तुलसी प्रियासी, कृष्ण तुलसी को बहुत, कृष्ण को बहुत प्रिय है, माधव को प्रिय है तुलसी, नमो नमा कृष्ण तुलसी कृष्ण प्रियासी, तुलसी कृष्ण प्रियासी, तो कृष्ण को बहुत प्रिय है तुलसी। और क्या मांगते हैं तुलसी से, क्या बोलते हैं, कुंज दियो वास, भगवान राधा कृष्ण कुंज में निवास करते हैं वहां जगह दीजिए। और कैसे रूप, कौन सा रूप है, कौन से रूप राशि है, युगल रूप राशि, और युगल भगवान राधा कृष्ण के रूप को आनंद देती है, लेकिन भक्तों को हमने दूसरे तरीके से गाते देखा है, सुना है आपने, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियासी डॉलर रूप राशि दिए कृपा करे दीजो यूएसए वास, कुंज वास नहीं अमेरिका वास दीजो, अमेरिका वास दे देती है, जो मांगते हो वो देती है। अब दूसरी लाइन में है गौर प्रिया शाक सेवन जीवन सार्थक मानी, अब गौर प्रिय शाक सेवन, अब खाना क्या चाहिए, बोला जो भगवान को पसंद था, क्योंकि खाते हैं प्रसाद, प्रसाद भगवान को जो पसंद है वही भोग लगाएंगे ना। अब हम क्या करते हैं, पिराया बेटा तुम क्या खाओगी आज, मम्मी पास्ता, तो मम्मी ने पास्ता बनाया, भगवान ए खाओगे, खाए ना खाए उसकी मर्जी, वहां भगवान के लिए थोड़ी बनाया, बनाया बच्चे के लिए भगवान को दिखाया। तो ये उसके विपरीत कहता है, गौर प्रिया साक सेवन, जो भगवान को प्रिय है वो हरी सब्जियां बना के भगवान को अर्पण करके प्रसाद खाने से क्या होता है, गौर प्रिया साग सेवन जीवन सार्थक माने, तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। और हमारी इच्छा से बना के खाया तो क्या होगा, जवान हमारी संतुष्ट हो गई, जीवन सार्थक नहीं हुआ, जीभा सार्थक हो गई, बड़ा बड़ा अंतर है। तो क्या खाना चाहिए जो भगवान को अच्छा लगता है। अब कहीं कोई देखा है कि मैं बीमार हूं, अगर मैं नहीं खा सकता हूं घी दही, तो भैया भगवान को मैं काय के लिए मेरा वाला डाइट प्रसाद भोग लगाऊं, उसके लिए हलवा पूरी बनाओ, लेकिन आप अपना साथ में रखो, भगवान हमारे को यही लिखा है, लेकिन उसके भगवान को आप डाइट प्रसाद के ऊपर मत डाल दो। भगवान के, भगवान की च्वाइस का खिलाओ, हम क्या करते हैं, हमारी च्वाइस का है वही भगवान के ऊपर थोप देते, खाए ना खाए पिज्जा भगवान आपके सामने देखता है भगवान की क्या आ गया कैसे किया समझ में नहीं आ रहा। तो प्रसाद के लिए भी साधन बता दिया कि जो प्रसाद उनको पसंद है वही। अब आखिरी लाइन पढ़िए, भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जाहा प्रति दिवस परम सुखे स्वीकार करिए ता। अब भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जो ये सारे कार्य करेगा जो अभी तक बोले हैं, फिर दुनिया में किसी कोने में हो कहीं भी हो वहां वो आनंद में रह सकता है। ये जिसके जीवन में सब आ जाए साधन, तो फिर दुनिया में कहीं भी, भक्ति विनोद कंक्लूड बाय सेइंग हूसोएवर अटेंड दिस स्टेज ऑफ एंथुसियाज्म फॉर दिस डिवोशनल प्रैक्टिसेस विल बी सुप्रीमली ब्लिसफुल वेयर एवर ही मे बी। तो कहीं भी रहें, तो बहरीन में रहें या दुबई में रहें या वृंदावन में रहें या अमेरिका में रहें, अगर ये सब काम करेंगे तो सदा आनंद में रहेंगे, क्योंकि ये सब चीजें भगवान के साथ रखेंगी। तो यहां ये भजन पूरा होता है, एकादशी के दिन प्राय इस भजन को गाने का नियम है। तो आप सब लोगों ने गाया तो नहीं, लेकिन हमको गाना आता भी नहीं है, लेकिन इसके भाव बड़े अच्छे हैं। ये असल में भक्ति का साधन है पूरा। क्या क्या होना चाहिए भक्ति में, तुलसी होनी चाहिए, गंगा भगवान का चरणामृत होना चाहिए, भगवान का घर में दर्शन होना चाहिए, भगवान का कीर्तन, जैसे घर में इन्हें हुआ ऐसे घर गोलोक बन जाता है, मृदंग बजे कीर्तन हो वहां जाना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। तो ये सब साधन है, ये साधन जिसके हृदय में उतर गए, इसके लिए जिसके लिए प्रेरणा है, वो कहीं भी दुनिया में बड़े आनंद से रह सकता है, कहीं भी दुनिया में आनंद में रह सकता है। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद, हरि बोल, श्री प्रभुपाद की जय।